अगला टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नाम है इख्तलाफ की हद। थोड़ा सा इसमें से कोटेशन पढ़ के सुनाऊंगी, फिर उसकी बुनियाद पे इंशाअल्लाह ताला हम कुछ चीज़ों को इसमें देखेंगे। हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान हिजरत से 17 साल पहले पैदा हुए और सन 60 यानी 60 हिजरी में वफात पाई। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हो चौथे खलीफा मुकर्रर हुए तो अमीर मुआविया शाम के हाकिम थे। अमीर मुआविया तकरीबन 40 साल तक हुक्मरान रहे, 20 साल शाम के गवर्नर की हैसियत से और 20 साल तक तमाम इस्लामी दुनिया के खलीफा की हैसियत से। जिस ज़माने में हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया के दरमियान इख्तलाफात बहुत बढ़े हुए थे, कुस्तनतुनिया की ईसाई यानी रूमी हुकूमत ने समझा कि ये वक्त मुस्लिम सल्तनत पर हमला करने के लिए सबसे ज़्यादा मौजू है। इसने एक बड़ी फ़ौज जमा की और ईरान के शिमाली सूबों पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी। ये इलाका इस वक्त हज़रत अली की हुकूमत में शामिल था। इस नाजुक मौके पर जबकि अली और मुआविया में जंग छिड़ी हुई थी, अगर ये हमला हो जाता तो हज़रत अली के लिए इसको बचाना मुश्किल हो जाता। बज़ाहर दिखाई देता था कि इस्लामी खिलाफत का एक वसी इलाका कट कर ईसाई सल्तनत में शामिल हो जाएगा। उम्मीद है कि आप साथ साथ इस पॉइंट को समझ रहे होंगे, यानी दो गिरोहों में थोड़ा सा इख्तलाफ हुआ तो उसकी बुनियाद पर नॉन मुस्लिम यानी रोमन बादशाह फ़ायदा उठाना चाहता था कि अगर मुसलमानों पर हमला कर दिया जाए तो जंग होगी और मुसलमानों का कुछ हिस्सा ईसाइयों को मिल जाएगा। ईसाई हुक्मरान कुस्तनतीनिया के किले में बैठा तमाम खबरें ले रहा था। वो इस्लामी खलीफा यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हो की मुश्किलात से खूब वाकिफ था। इसको यकीन था कि अली मुआविया के लिए हरीफ की हैसियत रखते हैं। वो ज़रूर अली को कमज़ोर करने की ईसाई कोशिशों से खुश होंगे, क्योंकि अमूमन इख्तलाफात में ऐसे ही होते हैं ना, दूसरी पार्टी को नुकसान दे के इंसान खुशी महसूस करता है, चाहे उसमें अपना कुछ फ़ायदा हो ना हो। तो इसका भी यही ख्याल था। इस तरह मुआविया की गैर जानिबदारी अली को जेर करने में नहायत मौसर साबित होगी और इसकी मुहिम आसानी से कामयाबी के मरहले तक पहुंच जाएगी। मगर अमीर मुआविया एक ऊंचे इंसान थे, वो हज़रत अली से इख्तलाफ के बावजूद इनसे इनाद रखने वाले नहीं थे। वो इस मामले को इस हद तक ले जाने के लिए तैयार न थे कि इन दोनों का बाख में इख्तलाफ इस्लामी दुनिया में रूमियों के दोबारा दाखिले का सबब बन जाए। उन्होंने जब ये खबर सुनी तो कैसर, जो कुस्तनतीनिया के ईसाई हुक्मरान का लकब था, इसको ख़त लिखा जिसका मजमून ये था, मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊंगी। ए रूमी कुत्ते, अगर तू हमारे आपस के इख्तलाफात से फ़ायदा उठाकर इस्लामी खिलाफत पर हमला करना चाहता है तो तुझको मालूम होना चाहिए कि अली की क़ियादत में जो लश्कर तेरे मुकाबले के लिए निकलेगा, मुआविया इस लश्कर का एक अदना सिपाही होगा। ये ख़त कुस्तनतीनिया के ईसाई हुक्मरान की उम्मीदों के ऐन खिलाफ था। इसको पढ़कर वो इतना घबरा उठा कि इसने इस्लामी इलाके पर हमले का इरादा तर्क कर दिया। क्या बात है इसमें हमारे गौर करने की कि बज़ाहर मुसलमानों के दो गिरोहों में इख्तलाफ हो सकता है। कभी कभी ये सियासी इख्तलाफ होता है, कभी मजहबी बुनियादों पे भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जब तक मुसलमानों के दिल आपस में मिले रहें, आपस की लड़ाई आपस तक, लेकिन जब दुश्मन इससे फ़ायदा उठाकर इस्लाम को नुकसान देने लगे तो वो सारे इख्तलाफात को छोड़कर एक आम सिपाही बन के भी इस्लाम का दिफा करेगा। ये है सोच जिसकी आज के दौर में ज़रूरत है। मुसलमानों में इख्तलाफात होंगे, कुछ जायज़ होंगे कुछ नाजायज़ भी होंगे, कहीं एक हक पे होगा कहीं दूसरा हक पे होगा, लेकिन इस बात को कोई मुसलमान गवारा नहीं कर सकता कि आपस के इख्तलाफात की बुनियाद पर इस्लाम को कमज़ोर करे। आज मुसलमान मुसलमान होने की वजह से दुश्मन की गोली का निशाना बनता है। अगर ऐसे वक्त में मुसलमान छोटे छोटे गिरोहों में बंटकर सिर्फ इस वजह से दूसरे मुसलमान का दिफा ना करें कि ये मेरी जमात या मेरे गिरोह या मेरे मसलक से नहीं, ये मेरे फ़िरक़े से नहीं, मेरी पार्टी से नहीं, तो याद रखिए कि फिर उसने इस बात का सबूत दिया कि उसको अपना नाम, अपना गिरोह, अपनी पार्टी इस्लाम की ज़िंदगी से ज़्यादा प्यारी हुई। ऐसे ही मुसलमान फिर दुश्मनों के हाथों में कठपुतलियाँ बनते हैं। आज मुसलमानों में जो फ़िरका वाराना इख्तलाफ दिखता है उसकी बुनियाद में ऐसी कई रूमी फौजें हो सकती हैं, कुछ ऐसी साजिशें होंगी कि दुश्मन ने हर दौर में इस्लाम को जब भी नुकसान पहुंचाया तो इसी बुनियाद पे पहुंचाया कि इनको आपस में लड़ा दें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी आंखें खोल दे और हम अपने इख्तलाफात को घर तक रखें, ना कि इसको इस्लाम की कमज़ोरी का सबब बनाएं। अगला टॉपिक है मशवरे पर इसरार नहीं। यानी जब किसी से कोई मशवरा मांगे तो दे दिया जाए, लेकिन इस बात का इसरार नहीं करना चाहिए कि अब मेरा मशवरा माना भी जाए। बदर की लड़ाई जो 2 हिजरी में हुई, इससे कुछ पहले कुरैश का एक बहुत बड़ा तिजारती काफ़िला 60 आदमियों की सरकर्दगी में शाम भेजा गया था। इस तिजारती काफ़िले में मक्का के मर्दों और औरतों ने अपना तमाम सरमाया लगा दिया था। बदर की लड़ाई में कुरैश को मुकम्मल शिकस्त हुई। ताहम अबू सुफियान को इसमें कामयाबी हुई कि वो तिजारती काफ़िले को साहली रास्ते से चलाकर मक्का पहुँच जाएँ। जंग के बाद सारा मक्का जोश इंतकाम से भरा हुआ था। कुरैश के ज़िम्मेदार अफराद का एक इज्तमा दारुल नदवा में हुआ। इस इज्तमा में मुत्तफिका तौर पर यह तय पाया कि तिजारती काफ़िले के शुरका सिर्फ अपना असल सरमाया ले लें और मुनाफे की रकम पूरी की पूरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जंग की तैयारी में लगा दी जाए। मुनाफे की यह रकम 50,000 दीनार थी, जो इस वक्त के लिहाज से बहुत बड़ी रकम थी। अब कुरैश ने ज़बरदस्त तैयारी की और शवाल 3 हिजरी में मक्का से निकलकर मदीना पर हमले के लिए रवाना हुए। इसी जंग का नाम जंगे उहद है। रसूलुल्लाह को जब खबर मिली तो आपने सहाबा को जमा करके मशवरा किया। बड़े सहाबा में से अक्सर की राय ये थी कि मदीना में रहकर मुकाबला किया जाए, मगर नौजवान तबका इसका पुरजोश मुखालिफ था। इनका ख्याल था कि अगर हम यहाँ ठहरेंगे तो दुश्मन इसको हमारी बुजदिली और कमज़ोरी पर महमूल करेंगे, इसलिए हमें बाहर निकलकर मुकाबला करना चाहिए। अब्दुल्ला बिन उबई की राय भी वही थी जो अकाबर सहाबा की थी, यानी शहर में रहकर मुकाबला किया जाए। इस सीरत इब्ने हिशाम की जिल्द 3 के सफ़ा 7 पर है, आप पढ़ सकते हैं। जिन लोगों की ये राय थी कि मदीना में रहकर मुकाबला किया जाए, इसकी बड़ी वजह मदीने का जुग्राफिया था, जो एक कुदरती हिसार का काम करता था। मदीने का जाए वकू ऐसा था कि इसके जनूब में खजूरों के घने बागात इस कसरत से थे कि इधर से कोई फ़ौज बस्ती के ऊपर हमला नहीं कर सकती थी। इसी तरह मशरक और मगरब के बड़े हिस्से में पहाड़ियाँ थीं, जो किसी फौजी पेशकदमी के लिए कुदरती रोक का काम कर रही थी। इसलिए कोई दुश्मन सिर्फ एक ही सिमत से मदीना पर हमला कर सकता था। इस जोग्राफियाई पोजीशन ने मदीना को जंगी एतबार से काफ़ी महफूज शहर बना दिया था। गोया मदीना एक किस्म का किला था। शहर से बाहर निकलकर वो चारों तरफ से दुश्मन की जद में हो जाते थे, जबकि मदीना के अंदर सिर्फ एक तरफ से मुकाबले का इंतज़ाम करना था। ग़ज़वा असाब में मदीना के इसी जाए वकू से फ़ायदा उठाया गया और इसकी खुली सिमत में शिमाल मगरबी रुख पर खंदक खोदकर पूरे शहर को महफूज कर लिया गया। बड़े सहाबा की अक्सरियत और अब्दुल्ला बिन उबई की राय अगरचे मदीना में रहकर मुकाबला करने की थी, मगर आपने नौजवान तबके की राय का लिहाज किया और 1,000 आदमियों के साथ मदीना से निकलकर उहद की तरफ रवाना हुए। अब्दुल्ला बिन उबई ने जब देखा कि इसकी राय नहीं मानी गई, जो बज़ाहर हालात के माकूल भी थी, तो इसको बहुत दुख हुआ। वो मदीना से निकल पड़ा, मगर दिल के अंदर गुस्सा बाकी था। चुनाचे इस्लामी लश्कर अभी मदीना और उहद के दरमियान था कि अब्दुल्ला बिन उबई अपने 300 साथियों को लेकर मदीना की तरफ वापस हो गया और अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा, रसूलुल्लाह ने इनकी बात मान ली और मेरी बात नहीं मानी। ऐ लोगों, हमको नहीं मालूम कि हम अपनी जानों को यहाँ क्यों हलाक करें। यानी फूट डालने की कोशिश की, हिम्मत तोड़ी, जो लोग साथ थे उनको अपने साथ मिलाया। सीरत इब्ने हिशाम की जिल्द 3 सफ़ात पर इसका ये कौल मौजूद है। उहद की जंग में शिकस्त ने यह साबित किया कि इन्हीं लोगों की राय दुरुस्त थी जो मदीना में रहकर मुकाबला करने के लिए कहते थे और बाहर निकलने से रोकते थे। चुनाच इसके बाद ग़ज़वा खंदक 5 हिजरी में इसी राय को इख्तियार किया गया और मदीना में रहकर मुकाबले की तदबीर की गई। ताहम तमाम बड़े सहाबा अपने इख्तलाफ राय को भूल कर रसूलुल्लाह के साथ रहे और जंग में शदीद नुकसान और तकलीफ़ के बावजूद पूरी बेजिगरी के साथ मुकाबला किया। सिर्फ अब्दुल्ला बिन उबई अलग हुआ और इसकी बिना पर रईसुल मुनाफिकीन कहलाया, यानी मुनाफिकों का सरदार। अब्दुल्ला बिन उबई की राय असूलन दुरुस्त थी, तजुर्बे ने भी इसके सही होने की तस्दीक की, मगर सेहत राय के बावजूद एतात से निकलना इसके लिए गुमराही और खुदा की नाराज़गी का सबब बन गया। यानी बात ठीक थी, लेकिन इसने अल्लाह के नबी की एतात के आगे जो रुकावट बना और उसको तोड़ा, ये इसका गुनाह था। यानी इसने उस वक्त अपनी राय को इतना बड़ा समझा कि अल्लाह के नबी सल्लम के फ़ैसले पर तनकीद करने लगा। इस्लाम में मशवरे की बेहद अहमियत है। हर आदमी को हक है कि वह अपना मशवरा पेश करे, लेकिन हर मशवरा देने वाला अगर ये भी चाहे कि इसके मशवरे पर ज़रूर अमल किया जाए तो कभी कोई काम नहीं हो सकता। आप भी सोचें, ये सच है ना? 10 लोगों से आप राय लेते हैं, 10 में से 5 लोग कहते हैं कर लें, 5 कहते हैं ना करें, 10 में से 8 कहते हैं कर लें, 2 कहते हैं ना करें, तो दोनों में से कोई ना एक पीछे हटेगा ना। तो हर एक की तो नहीं मानी जा सकती, वो तो हुक्म होता है जो माना जाए। मशवरे के अंदर तो बहरहाल मशवरा है, क्योंकि मुख्तलिफ रायों में से किसी एक राय को अमलन इख्तियार किया जा सकता है, ना कि हर राय को। सच्चे मुसलमान वो हैं जो मशवरा पेश करने के बाद अपना मशवरा भूल जाएं और ज़िम्मेदारों की तरफ से जो फ़ैसला हो इसको इस तरह मान लें जैसे वही इनकी अपनी राय थी। सबसे बड़ी कुर्बानी राय की कुर्बानी है। इस जुमले को आप लिख सकें तो ज़रूर लिखिए। किसी शख्स का ये कौल बहुत बामानी है। हकीकत यह है कि राय की कुर्बानी वाहद चीज़ है जिसके ऊपर कोई मजबूत इज्तमाईयत खड़ी होती है। कोई इमारत सिर्फ उस वक्त बनती है जबकि कुछ ईंटें अपने आप को ज़मीन में दबाने के लिए तैयार हों। इसी तरह कोई हकीकी इज्तमाईयत सिर्फ उस वक्त कायम होती है जबकि कुछ लोग इसके लिए तैयार हों कि वो अपनी राय को अपने सीने में छुपा लेंगे और इख्तलाफ राय के बावजूद इत्तेहाद अमल का सबूत देंगे। इस कुर्बानी के बगैर किसी इंसानी इज्तमाईयत का वजूद में आना इतना ही नामुमकिन है जितना ईंटों के बुनियाद में दफन हुए बगैर इमारत का वजूद में आना। तो इस तवील टॉपिक में बहुत सारी बातें हैं हमारे सीखने की। पहली बात है कि जब कोई इज्तमाई काम हो तो मशवरा किया जाए, मांगा जाए। दूसरी बात, मशवरा देने वाला अपनी समझ से सही इखलास के साथ इस्लाम को सामने रखते हुए मशवरा दे, उसके बाद उस मशवरे को माना गया कि ना माना गया इस पे गौर ना करे, इसको भूल जाए। क्योंकि अमीर या जो शख्स लीडर होता है उसकी नज़र हर तरह के हालात पे होती है, वो फैसला करे। फिर अगली बात है कि अगर हमारा मशवरा ना मानने के बाद नुकसान भी हो गया तो जतलाए नहीं। जैसा कि उहद के मौके पे हमें सहाबा की तरफ से कोई ऐसा कमेंट नहीं मिलता कि उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी आप क्यों बाहर गए थे। क्योंकि जब थोड़ी सी गड़बड़ होती है ना तो लीडर पे उंगलियां उठती हैं। फतह हो तो सबकी कामयाबी है और शिकस्त हो या हार हो या नुकसान हो तो लीडर की कमज़ोरी गिनी जाती, ये इंसानों की कमज़ोरी होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर अगली बात इसमें जो हमारे लिए अब सीखने की थी और अपना मुहासबा भी हम साथ साथ कर सकते हैं कि जब मेरे से कोई मशवरा मांगे और ना माने तो फिर क्या मैं उस काम में दिल की खुशी से शामिल रहती हूँ या ये सोच के पीछे हट जाती हूँ कि अच्छा फिर खुद ही कर लें, या फिर इस मौके की तलाश में रहती हूँ कि कोई नुकसान हो और मैं झट से कहूँ कि देखा मेरा तो मशवरा नहीं माना इसीलिए ये नुकसान हुआ। क्या अपनी ज़ाती राय को कुर्बान करती हूँ इस्लाम के मुफाद के लिए? क्या इख्तलाफ राय के बावजूद भी जम के रहती हूँ, जुड़ के रहती हूँ? क्या जब मेरी राय नहीं मानी जाती तो मैं दिल में गुस्सा तो नहीं रखती? इस तरह के सवालात खुद से करते जाएं और सीरत के इस खूबसूरत वाक्य से नसीहत लेते हुए वो तमाम लोग जो हदीस और रसूल की इताअत की बात करते हैं, जो सुन्नत की बात करते हैं, उनके लिए इस वाक्य में अल्लाह के नबी का अमल काबिले हुज्जत है। क्या आपने दूसरों के मशवरे को अहमियत दी? हत्ता कि अल्लाह के नबी भी कह सकते थे कि भाई मैंने तो ये नहीं कहा था कि बाहर चलो, क्योंकि इस मौके पे अल्लाह के नबी की भी राय यही थी कि मदीना में रहें, लेकिन आपने लोगों की राय को अहमियत दी। तो अच्छा लीडर और अच्छी टीम मिलके अच्छे काम के करने वाले बनते हैं, और जब मुसलमानों की ये सोच बन जाएगी इंशाल्लाह आप देखेंगे लोग मस्जिदों में अल्लाह से जुड़ने के साथ साथ बंदों से भी जुड़ेंगे। वो इस छोटी छोटी बात पे झगड़ा नहीं खड़ा करेंगे कि मेरी मानी कि नहीं मानी, मैंने ये कहा था तो फलां ने ये कहा था, फिर मैं नहीं रहती, सारी मैं खत्म हो जाती है। नतीजा क्या निकलता है, कैसे लोग अपने आप को फिर दांव पे लगाकर इस्लाम को बचा लेते हैं। और जितना ज़्यादा इंसान अल्लाह के दीन से मुखलस होता है, वो अपनी ज़ात को कुर्बान करता है। राय कुर्बान करना क्या बड़ी बात है, हम तो जान कुर्बान करने के ख्वाब देखते हैं। मैं सोचती हूँ कि जो लोग छोटी छोटी बातों पे अपनी राय नहीं छोड़ सकते, पसंद नापसंद नहीं छोड़ सकते, क्या वो जान कुर्बान करेंगे? हम तो अल्लाह के एक हुक्म पे छोटी सी कुर्बानी देना मुश्किल समझते हैं, तो क्या फिर हम अल्लाह ताला ही के दीन के नाम पे इख्तलाफात खड़े करेंगे? अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने वाला बना दे। अगला टॉपिक देखते हैं, इसका उनवान है इत्तेहाद की ताकत। किसी शख्स ने कभी ये नहीं सुना होगा कि सूरज की गर्मी से कागज़ जल गया, हालांकि सूरज की गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कागज़ तो क्या, पूरे का पूरा पहाड़ बल्कि सारा कुर्रे अर्ज़ इस तरह जल सकता है जैसे किसी भड़कते हुए तन्नूर में एक दिन का। मगर यही सूरज जिसकी गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बड़े बड़े जंगलों और पहाड़ों को भक से उड़ा दे, वो मौजूदा हालत में एक तिनके को भी जलाने पर कादिर नहीं है। ऐसा क्यों है? आप भी सोचिए, कभी सोचिए इस बारे में कि इतनी हीट है उसमें, उसके बावजूद भी सूरज जलाता क्यों नहीं है? बस उतनी ही रोशनी मिलती है जितनी के ज़रूरत होती है। आइए इसकी वजह देखते हैं। इसकी वजह यह है कि सूरज की शुआएं लाखों करोड़ों मील के दायरे में बिखरी हुई हैं। इस इंतशार की वजह से किसी एक चीज़ पर बयक वक्त उसकी शुआएं इतनी मकदार में नहीं पड़ती कि वहाँ वो इतनी गर्मी पैदा कर सकें जो किसी चीज़ को जलाने के लिए ज़रूरी है। हालांकि यही बिखरी हुई शुआएं अगर समेट दी जाएं, तो वो खौफनाक अलाव की शक्ल में भड़क सकती हैं। आफताबी चूल्हा सूरज की शुआओं के इसी किस्म के इर्तकास का नाम है। बिखरी हुई शुआओं को एक ख़ास दायरे में समेट देने की वजह से इस जगह इतनी गर्मी पैदा हो जाती है कि खाना पकने लगता है। आफताबी चूल्हा तो अभी बहुत कम राइज हो सका है, मगर आतिशी शीशा, बर्निंग ग्लास, एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर अशखास ने कभी ना कभी देखा होगा। आतिशी शीशा क्या है? ये एक कन्वेक्स लेंस है, यानी मुहद्दब या करवी अज्सा है, जिससे कागज़ या दूसरी आतिश पजीर चीज़ों में आग लगाई जा सकती है। आम हालात में कागज़ पर सूरज की जो शुआएं पड़ती हैं, वो इतनी ज़्यादा गर्मी पैदा नहीं कर सकती कि इसमें आग लग जाए, मगर इन्हीं शुआओं को जब जमा कर दिया जाता है तो वो शोले की मानित भड़क उठती हैं। कोई भी शख्स तजुर्बा करके मालूम कर सकता है कि लेंस इन शुआओं को ताकतवर बनाने के लिए क्या करता है। अगर आप एक छोटी सी तस्वीर अपने नोट्स में बनाना चाहें, पीछे से बिखरी हुई शुआएं आ रही थी सूरज की, आगे आपने एक अदसा रखा, शुआएं उस अदसे से टकराकर आगे जाकर एक नुक्ते पे जमा हो गई और इस नुक्ते पे फिर आग लग जाती है। इस नक्शे के मुताबिक आतिशी शीशे का तमाम तर अमल सिर्फ ये है कि वो इन शुआओं को जमा करे जो लेंस के ऊपर दायरे में पड़ रही हैं, और इनको इस तरह मोड़े या इस तरह मुनातिफ कर दे कि वो सब इकट्ठा होकर एक महदूद रकबे पर पड़ने लगें। सूरज की शुआओं का ये इज्तिमा इस महदूद रकबे में इतनी हरारत पैदा कर देता है कि कागज़ जलने लगता है। पहले तो आप जहन में लाइए कि आप मिसाल समझें, फिर इससे मैसेज जो मिलेगा वो समझ आएगा। यानी सूरज में गर्मी बहुत है, शुआएं भी बहुत हैं, चीज़ों को जलाती क्यों नहीं? क्योंकि ये शुआएं निकल तो सूरज से रही हैं, लेकिन आगे आके स्प्रेड हो जाती है, बिखर जाती हैं। माइंड में लाएं, पीछे से सूरज की शुआएं आ रही थी और आगे आते आते फैलती गई और उसका रेडियस दायराकार बढ़ता गया। लेकिन जब इसी सूरज की शुआओं के सामने एक लेंस रख दिया जाता है, तो उस लेंस पे बिखरी हुई शुआएं जब पड़ने के बाद लेंस के दूसरे हिस्से में जाती हैं, तो एक जगह पे जमा होती हैं, और उस जगह पे जब जमा हो जाती हैं, तो वो सारी छोटी छोटी शुआएं मिलने से बहुत ज़्यादा एक जगह हीट होती है, तो वहाँ आप कोई कागज़ रखें तो वो जल जाएगा। जैसे आज के दौर में इंफ्रा रेज और अल्ट्रा वायलेट रेज के ज़रिए से इलाज किया जाता है, या जैसे रेडियोलॉजी का नाम आप लोगों ने सुना होगा आजकल, तो जब बिखरी हुई शुआओं को जमा किया तो आग लग गई, और जब पीछे से शिद्दत के साथ आने वाली शुआएं आगे आके बिखरी तो आग ना लगाने वाली बनी। अब इससे हमने क्या सीखा इसको देखेंगे। इस मिसाल से ये बात पता चलती है कि इंतशार यानी बिखरने में, स्प्रेड आउट होने में, और इज्तमा यानी यूनिटी में क्या फ़र्क है। एक ही चीज़ अगर मुंतशिर हालत में हो यानी स्प्रेडेड हो तो वो बेवज़न है, लेकिन अगर इसे इकट्ठा कर दिया जाए तो इतनी ज़बरदस्त ताकत बन सकती है जिसका पहले तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। हिंदुस्तान के मुसलमान इस वक्त जिस कमज़ोरी की हालत में अपने आप को महसूस करते हैं वो हकीकतन इतने कमज़ोर नहीं है। ये कमज़ोरी इनके इंतशार की पैदा करदा है। अगर वो अपने दरमियान इज्तमाइयत का आतिशी शीशा यानी लेंस रख लें और इनफिरादी तौर पर बिखरी हुई शुआओं को एक मुकाम पर जमा कर दें तो यकायक वो देखेंगे कि जो शुआएं अलग अलग होने की सूरत में तिनका जलाने के लिए भी नाकाफी नजर आती थी, इन्हीं की गर्मी से शहतीर भड़क उठा है। हमारी मौजूदा तादाद और मौजूदा जराए और वसाइल जो मुनफरिद तौर पर बिल्कुल बेकीमत नज़र आते हैं, यही तादाद और यही जराए करोड़ों गुना ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर लेंगे। आज हर मुसलमान अपने आप को तनहा महसूस करता है। सच है? इस वक्त हर शख्स अपने आप को एक पूरी कौम की मानिंद समझने लगेगा, और जब ऐसा होगा तो दूसरे भी हमको इसी नज़र से देखेंगे जैसा कि फिल वाक़े हम अपने आप को समझते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद 10 करोड़ बताई जाती है। ये 10 करोड़ अफराद गोया 10 करोड़ धागे हैं। अगर वो अलग अलग हों तो कोई शख्स भी इन्हें बारी बारी तोड़ सकता है, लेकिन यही 10 करोड़ धागे अगर मिल जाएं तो वो इतना मजबूत रस्सा बन जाएंगे जिन्हें एक हाथ तो क्या सैकड़ों हाथ भी तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते। जो चीज़ अलग से देखने में महज एक धागा है वो इत्तेहाद की बरकत से मोटे रस्से का मुकाम हासिल कर लेगी। कतरा समंदर में हो तो वो समंदर है, और बाहर हो तो वो कतरे के सिवा और कुछ नहीं। ये इत्तेहाद और इज्तमाइयत मौजूदा हालात में मुसलमानों की शदीद तरीन ज़रूरत है। इसके बगैर हालात के सुधार के लिए कोई मौसर काम अंजाम नहीं दिया जा सकता। इस्लाह हाल की हर तजवीज़ अपनी कामयाबी के लिए ये चाहती है कि मुसलमान एक नुक्ते पर जमा हों ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़राए और वसाइल इसके लिए मुहैया हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हिमायत के साथ इसको मौसर बनाया जा सके। जब वो दुनिया के सामने आए तो लोगों को वो ज़्यादा से ज़्यादा बावज़न मालूम हो। कोई भी इज्तमाइयत ख्वाह वो कितने ही हल्के दर्जे की हो, यानी छोटा सा गिरोह ही क्यों नहीं है लोगों का, 2 या 4 लोग ही बैठ के क्यों ना कोई काम कर रहे हो, बहरहाल कुर्बानी चाहती है। किस चीज़ की? लिखें ज़रा कुर्बानियों की लिस्ट। वक्त की कुर्बानी, राय की कुर्बानी, हैसियत की कुर्बानी। अपनी हैसियत छोड़नी पड़ती है बाज़ दफ़ा, ऊंची कुर्सी से उतरकर नीची कुर्सी पे बैठना पड़ता है। ज़ाती मुफादात की कुर्बानी। कभी ऐसा होगा कि ज़ाती दायरे में आपको महसूस होगा कि आपका वक्त ज़ाया हो रहा है, मगर कौम को इसकी ज़रूरत होगी। यानी बाज़ दफ़ा जब हम दीनी काम करते हैं ना तो हमें ऐसे लगता है कि हम अपने दुनिया के कामों का नुकसान कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल आपके उस वक्त से अगर आपका कुछ नुकसान भी हुआ तो कौम को इससे फ़ायदा होगा। कभी अपनी राय को महज इसलिए छोड़ना होगा कि दूसरों को आप इसका कायल नहीं कर सके, और इश्तराक की कोई सूरत इसके सिवा नहीं है कि आप अपनी राय से अमली तौर पर दस्तबरदार हो जाएं। कभी जब लोग नहीं मानते ना तो फिर यूनिटी को कायम रखने के लिए अपनी राय छोड़नी पड़ती है। कभी आप देखेंगे कि इज्तमाई ढांचे में आपकी हैसियत घट रही है, मगर इसके बावजूद ढांचे को बरकरार रखने के लिए आप अपनी हैसियत को नज़रअंदाज कर देंगे। वही बात के लीडरशिप के लेवल से उतर के फॉलोअर्स में आना पड़ेगा। कभी इज्तमाई तकाजे आपके ज़ाती मुफादात को मुतासिर करने लगेंगे। ज़रूरत पुकारेगी कि इस वक्त अपना सरमाया ज़ाती ख्वाहिश में नहीं बल्कि काम कौम के काम में लगाओ, और आप इस पुकार को लब्बैक कहेंगे। कभी ज़ाती और ख़ानदानी मसालेह पर कौम की मसालेह को तरजीह देना होगा, वगैरह वगैरह। यानी कभी वाकई अपना ज़ाती फ़ायदा छोड़कर उम्मत का फ़ायदा करना पड़ता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है, एक ऐसे मुआशरे में ये इज्तमाईयत कायम नहीं हो सकती जहाँ सदारत और निजामत हासिल करने के लिए रस्साकशी होती हो। होती है आज हमारे इदारों में कि सदर बनना है मुझे, नाजिम आला बनना है। तो याद रखिए, जहाँ ये रस्साकशी होगी ना, वहाँ इज्तमाईयत कायम नहीं रहेगी। जहाँ कौम के पढ़े लिखे लोग महज बैरूनी मुल्कों की सियाहत की कीमत पर इसलिए राजी हो जाएं कि वो बाहर जाकर कौम की गलत नुमाइंदगी करें, एक एक लफ्ज़ पे सोचने की ज़रूरत है। जिसके अफराद को महज एक अच्छा ओहदा देकर खरीदा जा सकता हो, जहाँ एक मुस्लिम गिरोह दूसरे मुस्लिम गिरोह को शिकस्त देने के लिए कौम के दुश्मनों से मिल जाता हो, जहाँ ये हाल हो कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से खफा हो तो पुलिस के दफ्तर में इसके खिलाफ मुखबरी करने पहुँच जाए। अल्लाह अकबर, आज तो मुसलमान खुद मुसलमानों के खिलाफ रिपोर्टिंग करते हैं। जहाँ नज़र आए कि कुछ लोग एक मिली काम के लिए उठें तो बकिया लोग इसका तावुन करने की बजाय ये सोचने लग जाएं कि कहीं ये मैदान पर काबिज ना हो जाएं। अल्लाह अकबर। और फौरन इसी काम के लिए एक और अलहदा तंजीम कायम करके लोगों को अपनी तरफ बुलाना शुरू कर दें, जहाँ मिल्लत की ज़रूरियात खिदमत करने का मैदान न हो बल्कि लीडरी हासिल करने का सस्ता ज़रिया बन जाएं। मैं इस जुमले को दोहराऊंगी, जहाँ मिल्लत की ज़रूरियात खिदमत करने का मैदान न हो, यानी ये शौक न हो कि हमने खिदमत करनी है मिल्लत की, बल्कि लीडरी हासिल करने का सस्ता ज़रिया बन जाए। जहाँ लोग इज्तमाई एहसास से इस कदर नाशना हों कि इख्तलाफात पर गाली गलौच होने लगे और तरके कलाम की नौबत आ जाए। जहाँ लोगों की सतहियत का आलम ये हो कि इत्तेहाद की बजाय इख्तलाफ के अज्जा ढूंढते हों। जहाँ गिरोहबंदी इस शिद्दत को पहुँची हुई हो कि अपने दायरे से बाहर न किसी को तस्लीम करें और न अपने सिवा किसी को काम करने का अहल समझते हों। आज ऐसा है कि हमारे सिवा तो जो भी काम करेंगे वो इसके अहल ही नहीं है। जहाँ पस्ती का ये आलम हो और जहाँ इज्तमाई औसाफ की इस दर्जा कमी हो कि वहाँ तमाम लोग आखिर एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर जमा किस तरह होंगे। यही वजह आज लोग जमा नहीं हो पाते, किसी का मसला कुछ है तो किसी का कुछ। हकीकत यह है कि इस वक्त सबसे ज़रूरी काम ये है। आप भी सोचें ज़रा क्या होना चाहिए। हज करें, उम्रे कर लें, सदका करें, मस्जिदें बनाएं, नहीं, इस वक्त सबसे ज़रूरी काम यह है कि कौम को इखलाकी पस्ती से निकाला जाए और इसके अंदर इज्तमाई एहसास पैदा किया जाए। इसके बाद ये मुमकिन है कि हमारे अंदर कोई इज्तमाईयत बरपा हो सके। इत्तेहाद और इज्तमाईयत के बग़ैर हमारा कोई भी मसला हल नहीं हो सकता। और इत्तेहाद और इज्तमाईयत ऐसी चीज़ है जो पूरी तरह हमारे बस में है, वो किसी भी तरह हमारे लिए नामुमकिन नहीं। बकिया तमाम चीज़ों के लिए दूसरों को बदलना पड़ता है, जबकि इत्तेहाद कायम करने के लिए हमें सिर्फ अपने आप को बदलना है। दिल चाह रहा है कि एक एक लफ्ज़ सोने के पानी से लिखा जाए। मुहावरतन ये बात कह रही हूँ, लेकिन यकीन करें कि ये वो बुनियादी अनासर है जो आज बिखरी हुई उम्मत को जमा करने के लिए नागुज़ीर है। अल्लाह करे कि ये चीज़ें आम हो जाएं। इस पैगाम को आम करने में जो हिस्सेदार होगा कल क़यामत के दिन अल्लाह की निगाहों में बड़ा मुकाम पाएगा कि अल्लाह के नबी की उम्मत जो बिखर रही थी, टूट रही थी, उसको जोड़ने में हमने हल्का सा काम किया। गूंद बनने की कोशिश करनी है, लोगों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। आज के दौर की बहुत बड़ी ज़रूरत इत्तेहाद को कायम करने की कोशिशें। ये हर मोटा करके लिख लें कि इत्तेहाद कायम करने के लिए हमें सिर्फ अपने आप को बदलना है। अब अगर एक ऐसे इम्कान को भी हम हासिल नहीं करते जो खुद हमारे अपने बस में हो तो तारीख हमको कभी माफ़ नहीं करेगी। मुस्तकबिल का मुअर्रिख यानी तारीख लिखने वाला हिस्टोरियन यकीनन हमको मुजरिम ठहराएगा, ख्वाह अपने तौर पर हम दूसरों को अपनी मुसीबत का ज़िम्मेदार समझते हों। मैदान खुला है। हर बंदा जो दिल में उम्मत का दर्द रखता है वो गौर कर सकता है कि मैं कहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ। अगला टॉपिक भी पढ़ा है मैं, मस्जिद का दर्स, इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे बाद में। लेकिन पहले ये सोचें कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। क्या मस्जिदों में जाने वाले ही आज उम्मत को तोड़ने का ज़रिया तो नहीं बने? क्या आज इत्तेहाद की ताकत को हमने समझा? क्या कागज़ को जलाने के लिए जिस तरह सूरज की शुआओं को जमा करना ज़रूरी है, इस वक्त दुश्मन के प्रोपेगंडे और गैर इस्लामी सोचों को अपनी नस्लों से दूर करने के लिए हम सबको भी जमा होने की ज़रूरत नहीं है? बहुत ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसका शऊर दे दे और हम अपना मुहासबा करने वाले बन जाएं। सिर्फ बीच में एक ऐसा लेंस रखने की ज़रूरत है जो बिखरी हुई सारी कोशिशों, बिखरे हुए नामों को एक जगह जमा कर दे। और मुझे लगता है कि ये लेंस कुरान और सुन्नत है। आज मुसलमानों का इत्तेहाद कायम करने का एक ही रास्ता है कि सारे बिखरे बिखरे नामों को एक जगह जमा कर दो, कुरान और सुन्नत का लेंस सामने रख दो और सारी छोटी छोटी जमातें, गिरोह, तंजीमें इसी एक नाम पे जमा हो जाएं। अल्लाह ताला हमें सबसे पहले ख़ुद इस पे अमल की तौफीक अता फ़रमाए।